ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के चुनाव आगामी मार्गशीर्ष 4 गते करने का सरकार का निर्णय। भयरहित और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग तैयार है। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थापलिया का कथन। मतदाता नामावली संकलन कल से होगा स्थगित। और अमेरिकी सभामुख के ताइवान दौरे से क्रोधित चीन ने ताइवान के आसपास समुद्री क्षेत्र में किया व्यापक सैन्य अभ्यास। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आगामी मार्गशीर्ष 4 गते को प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के चुनाव करने का निर्णय किया है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने मार्गशीर्ष 4 गते को एक ही चरण में प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के चुनाव कराने का निर्णय किया है। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने दी। साथ ही मंत्री कार्की ने यह भी बताया कि लगातार बारिश के कारण देश के विभिन्न स्थानों में बाढ़ व भूस्खलन पीड़ितों के उद्धार और राहत संबंध में भी विचार विमर्श हुआ था। पत्रकार के इस सवाल पर कि चुनाव घोषणा के बाद अब संसद के कार्यकाल का क्या होगा, मंत्री कार्की ने बताया कि सरकार यही समझती है कि नए सांसदों के लिए उम्मीदवारी पंजीकरण के दिन मौजूदा संसद का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने आगामी मार्गशीर्ष 4 गते के प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव कराने के लिए खुद को तैयार बताया है। आयोग में आज बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थापलिया ने कहा कि चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष और भयरहित वातावरण में संपन्न करने के लिए आयोग आंतरिक तैयारी कर रहा है और अब बाकी काम भी शुरू होंगे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थापलिया ने बताया कि प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के चुनावों के लिए अलग अलग मतपत्र और अलग अलग मत पेटिकाएं होंगी। मौके पर आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड़ेल ने बताया कि कल से मतदाता नामावली संकलन का काम स्थगित हो जाएगा। सांसदों ने अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में सहभागी न होने संबंधी सरकार द्वारा अमेरिका को भेजे गए पत्र को सार्वजनिक करने की मांग की है। प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की संयुक्त समिति राज्य के निर्देशक सिद्धांत और नीति क्रियान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति की आज संसद सचिवालय में हुई बैठक में सांसदों ने ये मांग की। बैठक में परराष्ट्र और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर नेकपा एमाले के सांसद भीम रावल ने आरोप लगाया कि नेपाल के अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में शामिल न होने संबंधी अमेरिका को भेजे गए पत्र को सार्वजनिक करने से सरकार बचना चाहती है। इसी तरह खेम लोहनी, लक्ष्मी परियार, अनिल कुमार झा, दुर्गा पौड़ेल लगायत ने इस बात पर जोर दिया कि समिति द्वारा मांगे गए कागजात संबंधित मंत्रालय को उपलब्ध कराना चाहिए। समिति की सभापति नीरा देवी जयरू ने कहा कि एसपीपी के संबंध में सरकार द्वारा अमेरिकी सरकार को भेजे गए पत्र की पुनः समिति में मांग करते हुए पत्राचार किया जाएगा। देश में आज कोरोना के 760 नए मामले सामने आए हैं और एक संक्रमित की मौत हो गई। वहीं आज 324 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। आज 47,341 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजी।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। खाद्य आईन 2023 के विपरीत अखाद्य वस्तु उत्पादन करने वाली 115 उत्पादक कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग ने कही है। इस कंपनियों पर न्यून गुणवत्ता वाले कॉलिफर्म मिश्रित और अन्य तरह से दूषित खाद्य और पेय पदार्थ उत्पादन और बिना अनुज्ञापन के संचालन के आरोप है। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग के प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जन ने कहा कि अभियोग प्रमाणित होने पर दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन और बिक्री वितरण करने वालों के लिए खाद्य आयन ने 5 साल कैद और 50,000 रूपये तक का जुर्माना या दोनों ही सजा दिए जा सकने की व्यवस्था की है। लगातार बारिश के बाद आए बाढ़ व भूस्खलन के कारण देश भर के 5 सड़कें पूर्ण और 13 सड़कें आंशिक रूप में अवरुद्ध है। बारिश के कारण पूर्ण रूप से अवरुद्ध सड़कों में मुस्तांगी काहवरे भेरी रारा राजमार्ग अंतर्गत नुआकोट तोपला सड़क साफेबगड़ बैत मारतरी कोल्टी सड़क अंतर्गत अमलकोट बलदे सड़क रोलपा की कोयलावास लम्ही अर्जुन खोला घोराही होलेड़ी घरती गांव थवांग लुकुम सड़क और चितवन का मौरी पुल शामिल है। फिलहाल 13 सड़कों का सिंगल लेन संचालन में है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पोलेसी के ताइवान दौरे के क्रोधित की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के इर्द गिर्द 6 इलाकों में सैन्य अभ्यास शुरू किया। चीन के 100 से अधिक फाइटर जेट्स ने ताइवान के उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी एयर स्पेस में उड़ान भरी। इससे पहले ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पीएलए ने उनके उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिमी तट के पास 11 डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। वहीं चीन की ओर से दागी गई 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इमोनामिक जोन में गिरी है। जापान के रक्षा मंत्री नोमुओ किशी ने बताया कि डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए इस घटना का विरोध दर्ज कराया गया है। ताइवानी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 22 चीनी फाइटर जेट्स ने ताइवान स्ट्रेट को पार किया है। जापान ने तत्काल मिलिट्री ड्रिल खत्म करने की मांग की है। जापान के विदेश मंत्री होशिहामा हायासी ने कहा, चीनी एक्शन से इस क्षेत्र और इंटरनेशनल कम्युनिटी की शांति स्थिरता प्रभावित हुई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश ऐसी स्थिति के खिलाफ है जिससे विवाद पैदा हो। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग के लिए तैयार रहेंगे। ताइवान आने वाले करीब 50 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के चुनाव आगामी मार्ग शीर्ष 4 गते करने का सरकार का निर्णय। भयरहित और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग तैयार है, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थापलिया का कथन। मतदाता नामावली संकलन कल से होगा स्थगित। और अमेरिकी सभामुख के ताइवान दौरे से क्रोधित चीन ने ताइवान के आसपास समुद्री क्षेत्र में किया व्यापक सैन्य अभ्यास। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली समाचार। शुभ रात्रि।